राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 नवंबर 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवद् गीता में आया है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाशि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यत् करोषि जो करता है तू तैरना फिरना खाना पीना उठना बैठना सूझना जगना वो तू मेरे अर्पण कर देगी भगवान के अर्पण भगवान के लिए करता हूँ सब आपके अर्पण। और कहते यदश्नासी जो भोजन करता है वो भी मेरे अर्पण कर दे। भगवान का भोजन है भोजन करते हुए भी ये भगवान के अर्पण कर रहा हूं। कहते भोजन तो स्वयं कर रहा है तो स्वयं तो कर रहा है परंतु भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिदाग देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर होकर वैश्वानर अग्नि जठराग्नि है वो अग्नि अहम वैश्वानर मैं वैश्वानर हूं वो वैश्वानर होकर के और चतुर्विधम भोजन जो चार प्रकार है भोज्य भक्ष्य ले ये चोष्य भोज्य जैसे खिचड़ी है खीरा है अडवा है आदि भोज के भक्ष्य जो दांतों से चबा कर खाया जाता है विशेषता से रोटी आदि वो भक्ष्य और ये चाटा जाता है जैसे चटनी आदि वो हम चाटते हैं और एक चोष जो आम आदि चूसते हैं ये चार प्रकार का भोजन होता है। छह रस का भोजन होता है तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित इन संपूर्ण प्राणियों के भीतर मैं अग्नि रूप से विराजमान हूँ जठराग्नि जिसको भूख लगती है ना तो भूख लगती है फिर पाचन होता है जिससे वो पाचन करने की शक्ति जो अग्नि है वो मैं हो करके और चतुर्विधम अन्नम पचा में चार प्रकार के अन्न को मैं पाचन करता हूँ। प्राणापान समायुक्त प्राण अपान वायु को साथ रख करके मैं उसको पकाता हूँ पकाने वाले भगवान श्री कृष्ण है चठराग्नि के रूप से तो भोजन दे रहे हैं उस समय में सज्जनों भाइयों बहनों। भीतर जो अग्नि रूप से भगवान है जठराग्नि उन भगवान के हम अर्पण कर रहे हैं वो भजन हो जाएगा। पहले बताएगा जो कुछ करते हो सब मेरे अर्पण करो अब बताते हैं जो भोजन करता है वो अर्पण करू तो यत करू सीखा दायरा बहुत बड़ा है। यत करोशी में भोजन भी आ जाता है अब भोजन की क्रिया बताई, जो शरीर के लिए किया जाता है वो शरीर के लिए न केवल भगवान के भोग लगाया जाता है। वो आहुति कैसा होना चाहिए हव्य, वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। भगवान के अर्पण किया जाए तो शास्त्र निषिद्ध वस्तु कैसे की जाएगी, शास्त्र विहित हो। उसमें मैंने कहा था कि एक आयुर्वेद है, एक धर्मशास्त्र है, तो समय धर्मशास्त्र के अनुसार वो भोजन हो और अपने शरीर के अनुकूल पड़ता हो, आयुर्वेद शास्त्र से अनुकूल हो, तो ऐसा भोजन किया जाए। और भोजन करते ये भाव रखा जाए भगवान में ये आहुति दे रहा हूं। आहुति में सारा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मार्पणम अर्पण नाम शुवा है, ये शुवा है जिस शुवा से होम करते हैं उस सुख शुवा होता है, तो वो शुवा भी भगवान ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर हव्य पदार्थ है, वो जो भोजन करने के पदार्थ वो हवी है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागन ब्रह्म रूपी अग्नि वेश्वानर में ब्रह्मणाहुतम मैं रूप ब्रह्म वो होम करता है, तो ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्म कर्म समाधि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यह सब ब्रह्म रूप हो गया, तो ये रसनाशी जो भोजन करता है मेरे अर्पण कर दे, तो ग्रास ग्रास में भगवान के अर्पण करे। यत करोषी यदनाशी ऐसा आना जाना है, एक करोशी के अंतर्गत जाना देना देना देखना सुनना खाना पीना सोना जगना सब मेरे अर्पण कर दे। सुबह तो भगवान के अर्पण, सह तो भगवान के अर्पण, सत्संग में चले तो एक एक कदम भगवान के अर्पण कर दे। भगवान के अर्पण एक कदम है, यहाँ से जावे घर पर तो भी भगवान के अर्पण करता जावे, एक एक कदम भगवान के अर्पण है। तो ये दो क्रिया बताई, यद करोशी में सब क्रिया आ जाती है, उसके सिवाय जब भोजन करता है तो उसमें मनुष्य का स्वार्थ रहता है, अपना अभिमान रहता है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, वहां पर कहते भगवान के अर्पण कर रहा हूँ। वहां पर देव दो बात ये बताई, अब कहते यद जोशी ददाशी यद तपस्यसी, ये यज्ञ दान तप ये शास्त्रीय क्रिया, शास्त्र की आज्ञानुसार जो काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ है वो कई तरह के यज्ञ होते हैं, आहुति जिसमें दी जाए वो यज्ञ है। अग्नि में जो है तिल है चरसैला है, तिल है और जो है गिरी है घी है, ये चीज हव्य होता है, तो इसका जैसे आहुति दी जाए ऐसे भगवान में आहुति दी जाए तो यज्ञ होता है। बलिदेव बलिवैष्णदेव यज्ञ होता है जो नित्य ही मनुष्यों को करना चाहिए, रसोई पढ़ने के बाद जो पदार्थ हो गए हैं उन सब का भगवान के लिए बलिवैष्णदेव करे। विश्व मात्र को भोजन देने का उसका महात्म्य है, विश्वदेव संपूर्ण संसार मात्र को महायज्ञ है, ये बलिदेव देव महायज्ञ है, तो उसमें आहुतियां होती है। वे सब तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में वो लिखा था, अब अलग पन्ना भी एक गीता प्रेस से मिलता है, उसमें यत्र दिया हुआ है वैसे करा दे, वैसा ही एक थाली में उनके खाने बना करके और लिखवा दे तो थाली के ऊपर लेकर बुद्धे हुए, तो उन्हें अग्नि भी होती है परमात्मा भी होती है और कई देवताओं का यज्ञ दिया जाता है, तो उसमें अर्पण करके एकदम ब्रह्मणे नमामा ये ब्रह्म को दिया मैंने, ब्रह्मा को मेरे ने नहीं, ऐसे सब आहुति देता चला जाए। पास में थोड़ी सी अग्नि रखी होती है, उस अग्नि में होम होता है बलिवैश्व देव, तो वो यज्ञ होश जो होम करता है, और यज्ञ करने वाले होम करने वाले जितना होम करते हैं, भगत पर नामकरण आदि में भी होम होता है, जप करते हैं तो उसार दशार होम होता है, ऐसे जितने यज्ञ किए जाए वो सब भगवान के अर्पण किए जाए। महाराज ये भी आपके अर्पण है, तो यज्ञ यज्ञ होश और ददासियत जो दान देते हो, घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन देता है, रोटी देते हैं, आटा भी देते हैं, ऐसे जो दान देते हैं। और भक्त भक्त पर व्यतिपात होता है, अक्षय तृतीया होती है, अमावस्या होती है, ऐसे ऐसे जो दान के अवसर आते हैं द्वादशी आदि, उन अवसरों में जो दिया जाए वो सब तरह के दान होते हैं। पात्र देख करके अन्न जल वस्त्र औषध इसके पात्र हरेक होते हैं, परंतु द्रव्य देना वो तत्से ब्राह्मण है, शुद्ध वेद पाठी संयमी ऐसे ब्राह्मण हो, वन जाति से भी आचरणों से भी उत्तम हो, उसको दान दिया जाए। ऐसे कन्यादान जो अपने गोत्र और देख करके ठीक तरह से शास्त्र की विधि अनुसार दिया जाता है वो कन्यादान होता है। उसे कन्याओं लेते हैं, भूखे रहते हैं माँ बाप, जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक भी भूखे रहते हैं, कन्यादान करने के बाद भोजन करते हैं, तो भी एक दान है। ऐसे दान तब भी मेरी दान हम दिए थे अनुपकार ने है शास्त्र सरकार का। ऐसे आप वस्तु रखते हो तो उस पर टैक्स रोजाना दान करना चाहिए। अन्न दान है वो महादान है, क्यों अन्न से प्राण देते हैं वो प्राण दान है। अन्न न खा तो प्राण चल जाए, मर जाए आदमी, तो अन्न दानम महादानम। ऐसे विद्या दान ने किसी को पढ़ा दिया, ठीक जीव का अपने उपार्जन कर सके ऐसा दे दिया, विद्या ध्यान दिया, तो वो दान भी बड़ा अधिक होता है, अन्न दान से भी बढ़कर के बताया है। क्योंकि जीव का उपार्जन करने से उम्र भर कमाएगा खाएगा, तो उम्र भर का भोजन दे दिया उसने, तो विद्या दान है वो बड़ा दान है। विद्या दानम तथोधिकम, अन्न दान महादान है, विद्या दान उससे भी अधिक है। ऐसे लौकिक विद्यादान भी महान अधिक है। इसके सिवाय जो पारमार्थिक भगवान के भजन में किसी को लगा देना, सत्संग में लगा देना, सत्शास्त्रों में लगा देना, भगवान के भक्तों के चरित्रों में लगा देना, उन पुस्तकों को पढ़ा देना, उनका प्रचार करना, ये सबका सब ही यज्ञ है, दान है। दान तो ये दान है, ऐसे तो वो दान जैसे अन्नदान से महादान हुआ विद्यादान, और विद्यादान में जो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन है वे बता देना है, वो एक बड़ा भारी दान है। उस विद्यादान से भी ये विद्यादान बड़ा ऊंचा है। शास्त्रों की युक्तियां बता दे भी, साधन करो तो ऐसे करो, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इसके सिवाय लय योग, हट योग, राज योग, अष्टांग योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग है परमात्मा की प्राप्ति के, तो वो योग बता देना, उसकी सिखा देना, उसको समझा देना ठीक तरह से, ये एक विद्यादान है। तो ये विद्यादान उस सांसारिक विद्यादान से ऊंचा है। सांसारिक विद्यादान में तो उसके जीविका पैदा होती है, उम्र भर की रोटी होती है, पर इसमें तो उम्र भर का जन्म मन से रहित हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कीर्तन कराना है, भगवान के नाम जप में लगा देना है, गीता पाठ में लगा देना है, रामायण के पाठ में लगा देना है, ये सबका सब दान है, ये महादान है। उस महादान से भी बड़ा दान, महादान तो अन्नदान हो गया, उससे विद्यादान अधिक हुआ, विद्यादान के पास ये दान है। इस बात से भागवत में भूरिदा जरा भूरिदा बताया उनको, ये जो आप तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कर्म शाप हम, ऐसा जो आपका चरित्र है, भगवान के गुणानुवाद कहना, भगवान की कथा सुनाना, भक्तों की कथा सुनाना, ये एक बड़ा दान है। तो भूमिगृहंती थे जो पृथ्वी पर सबके सामने भगवान की कथा भक्तों की कथा कहते हैं, ते भूरी दा जना बहुत देने वाले, ज्यादा देने वाले है, अत्यधिक दान देने वाले वे है, जिससे कल्याण हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए। जैसे अन्नदान से भोजन करते ही तृप्ति होती है थोड़ी देर के लिए, इस वास्ते वो महादान है। प्यासे मर रहा है, जल दिया जाए तो एकदम तृप्ति हो जाती है, वो जल दान है वो भी अन्नदान एक ही बात है। ऐसे त्रुटि करने वाला जो वास्तव में पारमार्थिक तत्व का ज्ञान करा देना, भगवान के गुणानुवाद सुनाना सुनना आपस में, ये विलक्षण है जो परम शांति की प्राप्ति होती है। लोगों के भीतर संदेह हो, उन संदेह को दूर करके भगवान में लगा देना, शंकाओं का समाधान कर देना, ये सब दान है, ये महादान है। भूरी राजना वे बहुत देने वाले होते हैं। जैसे विवाह में विवाह होने पर भूर दिया करते, मारवाड़ में भूर कहते भूर, मनु ब्राह्मणों को दान देते हैं। जब विवाह होगा चमड़ी हो गई उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, उन ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। राजपूतों में ब्राह्मणों को भी देते हैं, चारणों को भी देते हैं, वो भूर है भूर। अब कहावत में कहते हैं अब क्या अब भूर पट गई, भूर पट गई अब तो अब काम हो गया, तो वो जाती फिर आपने क्या मिले भाई भूर में आ जा दे देते दे। तो भूर दान उसका नाम भूरी दादना, भूरी दादना। और भूरी सी दक्षिणा होती है, वो बड़ी दक्षिणा होती है, उसको भूरी दान कहते हैं। भूरी सी दक्षिणा बड़ी भाई दक्षिणा कहते हैं। रुपये रुपया दे दिया, चाचा दान दे दिया, पांच पांच रुपया दे दिया, ऐसे देते है ब्राह्मणों को, वो एक भूरी दान है। ऐसे भगवान की कथा चर्चा करता है वो भूरी दान है, भगवान की कथा में लगा देता है कोई वो भी बड़ा भारी दान है। इसमें लागे जगा दिया लग जाते हैं, ऐसे मैंने कई देखे हैं, कई सज्जन ऐसे ऐसे हुए हैं मेरे सामने, मैंने देखे हैं। बाहर चल रहे चलो भाई सदो सदो तुम भोजन भजन करो, देखो सत्संग हुआ चलो जाकर बैठा दिया। एक बात याद आ गई, कलकत्ते में राम प्रसाद जी मुंदरा थे तो सत्संग होती थी, सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते थे बहुत ही। वो मोटर लेकर के आते के ड्राइवरों को कहते कहले ये रुपया ले ले और सत्संग कर दो, सत्संग में लाकर बैठा देते रुपया दे देते, वो रुपये के लोभ से आकर बैठ जाता। ऐसे ड्राइवर बैठ जाते फिर आठ लग जाते फिर रुसी हो जाती, देरी आज तक देर ये रुपया ले सत्संग बैठ जाए, तो वो लोभ से बैठ जाए रुपया दे दिया कहना करता है। इस तरह से भगवान में लगा देना है बड़ी बढ़िया बात है। एक लड़का अपनी माँ को सत्संग में ले जाता था, वो सत्संग समाप्त होना आकर गाड़ी आ गई गाड़ी में ले चला जाता था। तो एक दिन वो पहुंचा तो माँ ने कह दिया बेटा आज तुम आज बैठ गया आज सत्संग सुन गए। वो सुन गया फिर महाराज वो स्वयं रोजाना ही सत्संग करने लग गया। कई ऐसे आदमी आए देखने के लिए सत्संग में लग गए। कलकत्ता में एक माहेश्वरी की दुकान में मुनीम थे, तो माहेश्वरी डागा थे वो सत्संग में आया करते। मुनीम जो करे तुम भी चलो सत्संग में चलो, तो उनकी रुचि नहीं थी, क्या फायदा उसे, निरंतर समय बर्बाद होता है, कौन एक की फायदा नहीं हुआ कोई फायदा नहीं। तो कई बार कहा तो कई बार कहने से एक वो मालाड़ी थे वैश्य, तो उनको लाकर लगा एक दिन का चलो, तो भैया मालिक है ये कह रहे हैं बार बार तो चलो, मारवाड़ी के कान खावे रुझ आई तो चलो। तो वो आकर बैठ गए, बैठ गए सत्संग में लग गए, फिर रोजाना आते सत्संग में। तो मालिक कह रहे हैं अपना काम खोटी करके तुम सत्संग करो, फिर सत्संग रुझने आ गए। ऐसे कई आदमियों को मेरे जान में आते जानता हूँ, वो इस तरह से लगाए और सत्संग में लग गए। तो इस सत्संग में लग गए तो वो जो दान है उनको प्राप्ति होती है, उनके दाने वाले के बड़ा पुण्य बताया। भूरी दाजना भूमि ग्रंथ की भूरी दान बड़े भारी दानी है वे उत्तम। अब बोलो दाने दानी तो हो गए बड़े, कोई खर्चा नहीं हमारे, क्या खर्च हो गया कुछ खर्च नहीं, भगवान के बारे सुनाई। और उसमें सुनाने वाले को लाभ लाभ ज्यादा होता है, सुनने वाले कभी आवे कभी ना भी आवे, कभी देरी से आवे, मगर सुनाने वाले तो भक्त पर आना ही पड़ता है, ड्यूटी बजानी ही पड़ती है। तो मैं कहूँ भाई आप तो मालिक हो, हम तो नौकर हैं, नौकर को तो ड्यूटी बजानी ही पड़ेगी। मालिक आवे ना आवे देरी से आवे खुशी है मौज है, इस वास्ते हम ड्यूटी बजाते हैं। और लाभ ज्यादा होता है क्योंकि मेरे सिद्धांत में बातें समझी हुई है, वो समझी हुई बातें खुद अपने आप में वो बुद्धि में आती है, बुद्धि के बाद मन की कल्पना में आती है, मन की कल्पना के बाद हमारा शब्दों में कहते हैं जबान में आती है, और शब्दों में जितनी बात कही जाती उतनी सब की सब बातें श्रोताओं के कानों में नहीं पहुंचती है, और जितनी पहुंचती है उतनी मन के मन स्वीकार नहीं करता है, और जितना मन स्वीकार करता है उतनी बुद्धि में जस्ती नहीं है, जितनी बुद्धि में जस्ती उतनी आचरण में आती नहीं है। तो सुनने वालों को लाभ होता है, जो 5-6 दर्जा बीच में जाकर जाए तो लाभ होता है, तो कहने वालों के भीतर प्रकट होती है बातें, उत्पन्न होती है, तो कितना लाभ होता है। हमें लाभ बहुत हुआ है, मेरे तो गीता का अभ्यास हुआ है, आप लोगों के पास सुनाते हैं गीता, सुनाने में गीता याद हो जाती है, तो याद हो गीता, गीता के भाव याद हो गए, सुनाते सुनाते पक्के हो गए, ठीक तरह समझने लग गए, और भूल निकल जाती है, कभी बात कोई भूल से कह दिया तो मनवाते भी तो आज ठीक नहीं हुआ, फिर सुधार के कह देते हैं। जैसे एक दिन किसी ने पूछा कि दशरथ जी महाराज को बुलाया ही नहीं जनक जी के, जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो मैं कहा भाई पता नहीं, वैसे एक बहन ने बताया कि वो किसी को ही नहीं दिया निमंत्रण, और राजाओं की हम जो हमने पल ठाना और सुन कर आए, राजा लोग सब मेरे अपन सुन सुन करके राजा लोग आए, तो सुन सुन गए आए, बोला तो किसी को ही नहीं था, जो ये नहीं कहा जनक जी ने, जब उनमें किसी ने दौड़ तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे आप से आप आए तो वो भी एक बात मिल गई ना हमें, जब मेरे से प्रश्न पूछा और मैं उत्तर नहीं दे सका, ख्याल नहीं आया उस समय, तो भाई पता नहीं, फिर मिलेगी तो किसी को बुलाया नहीं थे, सब जो प्रण है धनुष उठा लो उसको मेरी कन्या दूंगा, ऐसा जो पन ठाना पन बना लिया उसको सुन सुन करके नाना देश के भूपति आए यहाँ पर, तो सभी ऐसे ही आए, निमंत्रण का काम यही था, सीधी सारी बात। ऐसे राम जी भी आ गए, विश्वामित्र जी आगे चलो यज्ञ है, विश्वामित्र जी के साथ दशरथ जी महाराज ने जो पुत्र भेजे, दो भाई तुम वहां गये ननिहाल, दो भाई याद है राम और लक्ष्मण, इनको भेजा तो यज्ञ के लिए भेजा, विश्वामित्र के साथ गए, विश्वामित्र से आगाड़ी भाई जनकपुरी जाना चलो, तो वहाँ यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, यज्ञ का नाम सुना से राम जी गए, और यज्ञ नहीं कहते तो राम जी जाते नहीं, क्यों यज्ञ के लिए लाए थे दशरथ जी से, तो यज्ञ में जाने की तो छूट थी ही, और यज्ञ और जाने काम नहीं, तो विश्वामित्र बाबा ने कहा धनुष यज्ञ है, तो यज्ञ है तो चलो भाई आप भी चलो, यज्ञ में तो राजा ने आज्ञा दी है तो यज्ञ में चले गए। दूसरे से कहने से कई बातों का ज्ञान होता है, मेरे तो ऐसी बातें आती है समझ में, कई कई आश्चर्य जैसी बातें आती, मैं जिसको जानता नहीं हूँ पूछ लेते हैं तो मेरे जो उत्साह होता है उस समय में ऐसी बातें उत्पन्न होती, मेरे को आश्चर्य आती है, अरे ये मैं जानता ही नहीं था बात क्या थी। एक आदमी ने ज्योतिष की बात पूछी, तो ज्योतिष का मेरे विशेष अध्ययन नहीं है, बहुत थोड़ा अध्ययन है, उसमें बातें पूछी तो मैंने कहा भैया ज्योतिष का ज्यादा अध्ययन नहीं है मेरे तो बहुत थोड़ा है, ऐसे अगर कहने लगा बातें कहीं संतोष हो गया, मैं समाधान हो गया, आज तो यार मेरे को कि तो जानते ही नहीं है, समाधान हो जाता है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें कई याद होती है तो हमारे उससे लाभ ज्यादा होता है, और शास्त्रों कहते हैं ये दान देने वाले है, और दान देने वाले भी श्रोता है, इनकी कृपा से हमारे को याद होती है, इस वास्ते रामायण में लिखा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, एक नंबर में तो श्रोता है और वक्ता दो नंबर में है, अरे श्रोता ने तो सुना हुआ किसको, तो वक्ता पराधीन है श्रोता स्वाधीन है, श्रोता मर्जी हो जाए सुन जाए चला जाए, वक्ता अरे जो इधर सुनाएगा दुकान पर जाएगा मैं गीता सुनाऊ तो नाराज हो जाए, गीता सुना तेरे बाप को मेरे को, मैं मरता थोड़ी हूँ, तो गीता सुनाएगा मरता हूँ मैं, ये तो मरते सुनाया करते नाराज हो जाए लोग, अभी जाकर के बाजार पे गीता सुनाऊ गीता सुनाओ, अरे आप लोग कहते सुनाओ गीता सुनाते हैं और सुना जाए अच्छी तरह से, अब नहीं सुनाने वाले को सुनना हो तो किसको सुना मैं, ये बड़े कहलाते हैं कि सुनाने वाले बड़े हैं, ये बड़प्पन आपका दिया हुआ है, मैं कहूँ धनी बड़ा भी लोगों का दिया हुआ है, लोग समझते हैं हमारा लाख रुपया है हम लखपति हैं धनी हैं, लखपति कब होते हैं कि गांव में शास्त्रपति है कोई लखपति है नहीं एक है तो लखपति धनी होता है, पर लाखों रुपया सबके पास में वहां लखपति की कोई पूछ होती है, वहां करोड़पति पूछ होती है, तो करोड़पति का बड़ा टाइटल तो लोगों ने दिया जिनके करोड़पति नहीं है उनका दिया हुआ है, वो समझता है कि हम बड़े हो गए, तुम बड़े छोटों के बनाए हुए बाबा, तुम स्वयं बड़े नहीं हो। सब धनी हो तो क्या धनी की इज्जत होती है? निर्धनों ने ही धनी की इज्जत की है, ऐसे बिना पढ़े हुए ने पढ़े हुए की इज्जत की है, ऐसे सुनने वालों ने ही वक्ता की इज्जत की है, ये ऐसे डॉक्टरों की इज्जत रोगियों ने की है, वैद्यों ने की है, वकीलों की लड़ाई झगड़े वालों ने इज्जत की है, यह तो उससे मान देते हम बड़े हो गए। ये बैम पड़ जाता है कि हम बड़े हो गए सब। अरे बड़े किसके बनाए हुए हो? तुम्हारे को जन्मदाता कौन? तुम्हारे बड़ेपन के जन्मदाता तो ये है ना सुनने वाले। तो बड़ा लाभ होता है इसे। अरे भूरी दादना सास भी कहता है बहुत देते, सब बहुत देते, मनु भूल जाए कि हम देने वाले हैं नहीं। देने वाले को बड़ा लाभ होता है, मेरे तो इस बात का अनुभव है। सुनने वालों ने मेरे को बहुत सिखाया है। कई तरह की शंका करते हैं तो मेरे समझ में ऐसे आवे ना आवे, वो शंका करके समझ में आ जाती है बात। कई बार ऐसी बात बीती हुई है कि पूछने वाले से आ जाती है, सुनने वाले होते हैं तो समझ पैदा होता है। मैंने एक महात्मा से पूछा कि मेरे में सुनाने पर सुनने वाले ज्यादा आते हैं और उत्कंठा पूर्ण सुनते हैं तो मेरे बातें बहुत पैदा होती है, ऐसा सुनने वाले बेपरवाह करते हैं तो वहां मेरे पैदा होती नहीं, बात बहुत कम पैदा होती है। तो ये क्या मान बढ़ाई है? पहचान नहीं सका, बढ़ाई करे लोग तो वाह वाह कर फूल जाए, बातें आ जाए ऐसी ऐसी, बढ़ाई कोई नहीं कर दो बातें नहीं आ गई ऐसी, क्या बात है? तो बढ़ाई भी होती है और न्याय भी है। जो पूछने वाले पूछते हैं उनके लिए भगवत कृपा से पैदा होती है, वो न्याय भी है कि सुनने वाले और सुनने के बाद पैदा होती है। गुरु स्निग्ध्य शिष्य से गुरु गुहे मप्यता, गुरु जन जो गोपनीय गढ़िया बातें हैं तो स्नेह रख करके सुनने वाले को वो कह देते हैं, कहना पड़ता है। एक संत मिले थे, वो कहते थे मैं बातें कहने की तो इच्छा ही नहीं करता, पर जो सुनने की इच्छा वाले ऐसे है जो मेरे से खींच लेते। जैसे वर्षा होती है तो जहाँ वृक्षावली अधिक होती है वे वृक्ष वर्षा को खींच लेते हैं, ऐसे सुनने वाले मेरी बातें गहरी गहरी भीतर की गूढ़ बातें वो भी खींच लेते हैं, आई जाती है सुनने वाले उधर आ जाता है। अरे जहाँ पात्र होता है उसको चीज तो मिलती है, वो मिलती है भगवान की तरफ से। निमित्त किसी को बना दे, हम समझते हमने सुना दिया तो हमने क्या सुनाई, वो सुनाने वाले भगवान है। भगवान में सब विलक्षण विलक्षण चीजें हैं, इस बात अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है अभिमान द्वेषी, भगवान अभिमान के द्वेषी है। नारद जी के मन में आ गए कि मैं काम को जीत गया, क्या दशा हुई? फजीती हुई ना। तो ये अभिमान तो फजीती करता है भाई, वो अभिमान है कहते थे अपना। तो अभिमान कब करते हैं? अपनी बात मानते हैं। वहां दादा जी के कामदेव को जीता तो सीम के चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान का रखा रक्षा करने वाले हुआ। वो समझा गया कि जीते वो काम अहम इत्यादि, मैं जीत गया। जहां भगवान की कृपा से होने वाले को मैं मान लेता है, मैं ऐसा गए मैं, वो पतन हो जाता है। जब मन किस बात का भाई, हम तो है जैसे ही है। भगवान की दी हुई शक्ति से बड़े होकर के अपना अभिमान कर देते हैं तो गलती होती है। तो आज ही करे सो राम जी कह सतगुरु को संत, भूली बने सो आप भी ऐसी उदाहरण। अच्छी बात होती है हमारे द्वारा, वो भगवान की कृपा से होती है। अभिमान करके हम करते हैं वो हमारा अभिमान होता है, हमारी भूल होती है, हमारी गलती होती है। अरे अपना अभिमान न करे तो कंचन खान खुले घटमा ही रामदास के टोटो नाही। भगवान की कृपा देता तो कंचन खानी खुली घटमाई, घटमा कंचन खान खुल गई। अब टोटा किस बात का है? महान विलक्षण विलक्षण अलग अलग बात आविष्कार निकलती है। संतों की वाणी में मैंने लिख सुना है कि जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वेदों के अर्थ प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में वेदों में लिखी हुई बातें, वेदों के दर्शन ही नहीं किए परंतु वेदों की बातें प्रकट हो जाती है। भगवान के भजन से, भगवान के चिंतन से प्रकट हो जाती है। ऐसी बातें हमने देखी है, हमने ऐसी सुनी है, ऐसी बातें समझ में आई है हमारे। पंजाब में एक फूला सिंह जी संत हुए, पंजाब के सिख थे, पढ़े सुने वर्णमाला भी नहीं पढ़ी, कुछ पढ़े नहीं, अपने बछड़ा चराते थे, फिर बड़े हो गए तो गाय चराने लग गए, घर की गाय चराया करती। तो एक कोई संत मिल गया जंगल में, कोई आ गया, उसने कोई बात बता दी, भगवान का नाम बता दिया और नाम स्मरण करने लगे। भजन नाम नहीं आता, वो कहता मैं तो लेखा करता हूँ। लेखा किया करते आदमी इस तरह से अंगुलियां पर एक दो चाहिए, तो लेखा करता हूँ, लेखा ही कहते, भजन का नाम ही नहीं याद, लेखा करता हूँ। वो लेखा करते थे तो लेखा करने में निगर रखे तो लेखे में ध्यान न लगे, मन न लगे, और मन लगाकर भजन करते थे। ऐसा नहीं भी संख्या पूरी कर दी मार दे दी, ऐसा नहीं, मन लगा करते थे। और गाय किसी खेत में चले जाए तो महाराज बड़ा उला ना मिले, मारपीट भी हो जाए कहीं, तो वो क्या करते, गायों को खड़ी करके, गौ माता सुनो, ये खेत जितने गए, इस खेत में तुम्हारा हम मनुष्यों का दोनों का हिस्सा है, जब ये मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा तो ये सब तुम्हारे को ही मिलेगा। और क्या करेगा, कहीं घास मनुष्य खाएंगे, मनुष्य ले लेंगे, तो ये मनुष्य ले ले तब तक तुम मत जाना, खेत में जाना, क्योंकि मनुष्यों का हिस्सा है, तुम्हारा भाग तो है नहीं, साथ मनुष्यों का भाग मिला हुआ है, और वो ले लेंगे तो तुम्हारे को मिलेगा, ये तो क्यों जल्दी करो। ऐसे गाय वो कह देते तो देखा लग जाते, गाय खेत में नहीं जाती, बार बार चलती रहती, खेत में नहीं जाती। छोड़ो गयों को मालूम पड़ा गाय चराने वालों को, वे भी लागे उस गाय में, फिर खेलते खूब मौज से, उनमें वो मंत्र सुना देते, कहते गौ माता खेत में नहीं जाना, इसमें मनुष्यों का तुम्हारा दोनों का हिस्सा है, अभी तो मिलेगा मनुष्यों का हिस्सा, मनुष्यों को मिलेगा, तो भाई मत खाना। गाय नहीं जाती, वो अपने लेखा कर देखो, कोई 120-125 वर्ष की अवस्था हुई, इतने बूढ़े हो गए, बड़े संत हुए वो। तो एक पंडित था, उसने पूछी कई बातें, कल्याण पुराने कल्याण में उनकी जीवनी आई थी, तो पंडित जी ने बातें पूछी कई शास्त्रों की, विशेष विशेष, तो उनको बड़ा इज्जत आता, ऐसी बातें लिखी हुई है, अभी तो लोगों को इज्जत आते है, लिखी हुई बातें आचरण में आती है क्या, इनमें संदेह। वो कहते हैं तो आचरण में आने के बाद लिखी हुई मिलती है क्या पोथी में, अभी पढ़े हुए थे नहीं। तो पंडित जी ने पूछा कि योग दर्शन में आता है सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रयत्व, मन सत्य बोलते बोलते सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उस वचन जो निकले वो सत्य हो जाता है, क्या बात है ये। पंडित ने पूछा फूला सिंह जी से, ये बात पोथी में लिखी है, हमारा पोथी में लिखी है, तो कैसे होती है, कहते जो सत्य बोलता है एकदम, तो सत्य बोलते बोलते सत्य की प्राप्ति हो जाती है, तो अगर होने वाली बात ही उनसे मुख से निकलती है, न होने वाली निकलती ही नहीं। ये व्याख्या महाराज वो सुनी मैंने, योग भाष्य में ये व्याख्या नहीं है, टीका में ये भाष्य नहीं है, ऐसी टीका कर दी बाबा ने, अपन आदमी समझे पढ़ लिखे ही नहीं। तो भगवान के भजन करने से बहुत विलक्षण विलक्षण पढ़ाई हो जाती है, जो पढ़ करके नहीं कर सकते, ऐसी पढ़ाई इतना ज्ञान इतनी विलक्षणता उसमें आ जाती है, क्योंकि सबका केंद्र तो परमात्मा है, परमात्मा से चीजें आती है, परमात्मा के साथ वो एक हो गया, अब उसे कभी किस बात के नहीं, इस बात भजन करने से बातें आ जाती है। तो ऐसी बातें सत्संग में मिलती है, शास्त्रों में मिलती है, पठन पाठन करने से मिलती है, आपस में भगवान की चर्चा करने से ऐसी बातें मिलती है, भगवान खुल जाते हैं, भगवान को देने वाले है। जब भगवान की बात कहने वाले भी भूरी राजना है तो भगवान कैसे विलक्षण है, बहुत दान देते हैं, तो उनकी बातें सब आ जाती है। कोई ग्राहक होना चाहिए सच्चे हृदय से, उनको बातें मिलती है। तो ये ददाशी बात आई, देता है वो मरे अर्पण कर दे, यत करोशी यदनाशी यद जोशी ददाशी, यत ददाशी जो देता है भगवान के अर्पण, ये सब आपके अर्पण, आपकी वस्तु आपके अर्पण, तुभ्यम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको अर्पण करते हैं महाराज, आपकी दी हुई आपके अर्पण, हमारे घर का क्या है, जो हमारे कुछ मिला है आपका अर्पण, भोजन मिल जाए भगवान अर्पण कर दो, तो भगवान की कृपा से मिला भगवान को अर्पण कर दिया, फिर प्रसाद पाओ आप शुद्ध हो जाओगे, भगवान के प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होती है, और भगवान के अर्पण कर दो भोजन शुद्ध हो जाता है, फिर बुद्धि शुद्ध होती है, कैसी बढ़िया बात है, मिलता है भगवान की कृपा से, सबको भगवान भोजन देते हैं, जितने जो है सभी, एक दो आता है पो फाटी पगड़ो भयो और जागृष्टिया चूर्ण, साई सबको देते हैं चाँस पुराने चूर्ण, मारवाड़ी भाषा में अब तो रात बीत गई, पकड़ो भैया को सुबह हो गया, प्रभात हो गया, सब चूर्ण जाग गए, तो साई शब्द देती है चांच पुराने चूर्ण, जैसी चांच है वैसे चूर्ण देते हैं सबको, भगवान सबको देते हैं, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, चीटी को, बड़ी वृक्ष आदि सबको देते हैं भगवान, तो सबको देते हैं, उसमें हम कई बातें कहते हैं, हम श्राद देते हैं, हम श्राद देते, अरे तुम्हारे पास क्लास है, अरे तुम्हारा तो अभिमान हो गया, तुम्हारा है हम ये तुम्हारी है अहंकार, गहरा है तो भगवान की चीज, तो भगवान की चीज आ गई तो उनको दे दी। एक दान देने वाले सज्जन थे, उनकी कथा सुनी है मैंने, तो वो चार द्रव्यों से दान देते थे, कोई आ जाए जो मांग रहे अपना चीज हो वो दे देना, ऐसे दान देते, बड़े धनी हो गए। ये देने से, दान देने से घटती नहीं है वस्तु, ये देने में संकोच करते हैं वे घट नहीं जाए, घटती नहीं है। दान दिए जैसे सरोवर पंचन के पिए सरोवर घटत नीर, पक्षी पर्यत शरीर, अब समुद्र थोड़ा कम हो जाएगा, सरोवर कम हो जाएगा क्या, इस बात से दान दिए धन दान घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटत नीर, वो भी सरोवर में बूंद में भी घटता है, और दान का ये कायदा है कि बढ़ता है, ये जो देता है जो दान बढ़ती है चीज, अपूर्व को विद्यते तो भारती, इन्हें कहा हे सरस्वती माता आपका खजाना बड़ा विचित्र है, आपका खजाना देता रहे दाने न बढ़ते नित्यम, जो तुम पढ़ाते हो तुम बढ़ते बढ़ते विद्वान बन जाओ आप भी, दाने न बढ़ते नित्यम अदाने न विनश्यति, नहीं दो तो नष्ट हो जाएगा, कैसी विचित्र बात है, अरे दान देने से धन नष्ट होता है, अरे नहीं देने से नष्ट हो जाता है, अरे दान से बढ़ता है, तो वो जो देता है जो उसकी विद्या बढ़ती है, ऐसे दान देने वाले के धन बढ़ता है, ऐसा योगदान देता रहे तो भगवान बढ़ा देते हैं, क्यों भगवान को तो सबका पालन पोषण करना है, अरे कोई पालन पोषण करने वाला मिल गया तो भगवान के तो मददगार हो गया वो, भगवान तो सबको अन्न जल पानी आदि देते ही, कोई डर लग गया तो भगवान कहते मेरे तो सहारा दे दिया इसने, सबका पालन करना, ये काम इतना ले लिया तो मेरा काम इतना घट गया, जो भगवान की सहायता करने वाले हैं, इस वास्ते भगवान की तरफ से वे चीजें आती है, तो यज्ञ हो दला से यज्ञ जो देता है भगवान के अर्पण करो महाराज आपकी वस्तु है, अरे भगवान ही लेने वाले आते हैं, दरिद्रता रूप धारण भी भगवान करते हैं, तुम्हारे से लेने के लिए तुम्हारे दान देने के लिए जाते हैं, एक साधु गया भिक्षा के लिए, क्षमा निर्वास हो गई, मैं भिक्षा को गया तो बाबा क्यों आया है कि तेरे को डरना सिखाने के लिए आया हूं, हम नहीं मांगे तुम देना कैसे सीखोगे, तुम्हारे दान सीखना चाहिए देना तो हम लेते हैं तभी दान सीखोगे, तो तुम्हारे को दान सिखाने के लिए आया हूं, तुम्हारे तुम लेने वाला हो तभी दान सीखोगे, सीखो कैसे आप कैसे सीखो बताओ, कोई लेने वाला नहीं हो तो हम शिक्षा कैसे मिलेगी, तो ये दीयताम दीयताम नित्यम धातु फमीदृशम बोधयंती यादंते भिक्षा द्वारी गृह गृह, घर घर में जो मांगने वाले हैं वे कहते तुम दियो, दीयताम दीयताम नित्यम रोजिना देव रोजिना देव देव देवे, तो ये भिक्षा लेने वाले गृह गृह घर घर में मांगते फिरते हैं, वे ज्ञान देते हैं तुम्हारे को, उपदेश देते हैं तुम्हारे को, शिक्षा देते हैं, तुम सोते हुए को जगाते हैं, जागृत कर रहे हैं, क्या दीयताम दीयताम नित्यम तुम देव देव, इस बात से बोधयंती न याचन्ते, ये मांगते नहीं है तो ज्ञान देते हैं, बोधयंती बोधयंती न याचन्ते भिक्षां द्वारी गृह गृह दीयताम दीयताम नित्यम, क्यों अगर तू फल हमने दिया कुछ मांगते फिरते हैं, हम दिया नहीं मांगते फिरते, तुम भी दो नहीं तुम्हारी हमारी दर्शन तुम्हारी हो जाएगी, तुम भी मांगते फिरोगे, दीयताम दीयताम नित्यम अदातु परमीदृशम, न देने का ऐसा फल होता है देख लो, तो तुम्हें ऐसा अच्छा भंडार दिया करो, तो ऐसे लेने वाले शिक्षा देते हैं, मनुष्य गुरु बना दे, चौबीस गुरु बना दे महाराज दत्तात्रेय जी ने, ऐसे वो गुरु है लेने वाले मांगने वाले सब गुरु होते हैं, इस बार तो भाई सब देने वाले हैं। तो देने वाला है वो भी अर्पण भगवान के करो, जो दिया जाए भगवान के अर्पण, जो कथा सुनाई भगवान के अर्पण, जो बात किसी को बताई भगवान के अर्पण, किसी को सम्मति दी तो भगवान के अर्पण, भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण करी। पोस्टमैन को तो क्यों परिश्रम करना है, घर से कोई ना लिफाफा देता है ना कार्ड देता है ना रुपया देता है, घर से देता ही नहीं, लो सर रजिस्ट्री आई आप लो, अब घर से पोस्टमैन दे गया सर, तो पोस्टमैन दे गया अपने घर से दी गई आप आई है, ऐसे भगवान की चीज आई, हम लोग कहते हैं ऐसा भगवान करो ऐसा करो ऐसा, कहाँ से आई, आपके नाम से ये कार्ड लिफाफा आया है, रजिस्ट्री आई मेरा आया है, आप ले अपना स्वीकार करो, भगवान की आशा है, ऐसे दिए दाम दिए दान करे वो भगवान ने पर करे, यज्ञोषी ददासी यत तपस्या सी, और तपस्या करते हैं वो भी भगवान अर्पण करो, मानो संयम करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, तरह तरह के व्रत है, एकादशी आदि का व्रत है, सोमवार का व्रत है, रविवार का व्रत है, नियम पालन करते हैं, पतिव्रत पालन करते हैं, गुरु आज्ञा पालन करते हैं, माँ बाप की सेवा का व्रत लेते हैं, दान देने का व्रत लेते हैं, जो व्रत नियम ले लिया वो तपस्या होती है, उसमें उसमें कष्ट सहना पड़ता है व्रत के निभाने में, तो ये तपस्या से कौन दे, तत्गुरु समद अर्पण भगवान का अर्पण कर दो, ये जो बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें आई। एकनाथ जी महाराज ने एकादश स्कंद पर टीका ली, मराठी में लिखी, उसका हिंदी अनुवाद भी समान, नारायण 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 नारायण, भागवत में एकादश में निष्फल आए ऐसा निष्फल शब्द आता है, तो उन्हें अर्थ किया निष्फल है, तुम भूल गए, कोई बात याद नहीं रही, भगवान का अर्पण कर दो, पुण्य हो जाएगा, कहीं इतनी बात है, कहीं आपकी चोरी हो गई वो भी भगवान अर्पण कर दो, भगवान पुण्य हो जाएगा, भगवान क्यों घाटा थोड़ा ही है, घाटा तो अर्पण करने वाले भक्तों का है, भगवान घाटा नहीं है, इस राज कहीं धन खोया गया वो भगवान अर्पण कर दो, निष्फल क्रिया की चलना फिरना बोलना चलना भगवान को अर्पण कर दो, कृष्णा अर्पण मस्तु, सब भक्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा, कितनी विलक्षण बात भाई संतों ने, तुम्हारी निष्फल क्रिया है, साफ निरर्थक क्रिया है, तुम्हारी भूल है, तुम्हारे चोरी हुई, तुम्हारे डाका धला, ये सब भगवान का अर्पण कर दो, वो सब का सब भगवत अर्पण भक्ति हो जाएगी, तो जो कुछ करो चलो फिरो उठो बैठो भगवान के अर्पण करो, कि महाराज ये आपके अर्पण में सत्संग में गए आपके अर्पण, सत्संग से घर पर गए आपके अर्पण है, कूड़ा कचरा झाड़ू थिया वो भगवान आपके अर्पण है, आपका घर है उसको हमने पवित्र किया है, आपका काम करते हैं, भगवान कहा भाई मेरा काम किया करोगे, अब बंदर है सब भगवान के लिए गए, तो जंगलों में काम क्या था, बंदरों से पूजा पहाड़ों में जा रहा है, काम तो उनका था ही, अब सीता माता की खोज के लिए गए तो भगवान कहते मैं तो ऋणी हूँ, बंदरों की ऋणी हो गई, ये मेरे सखा है बशीर जी सुनाते है, युद्ध किया और ऋणी हूँ मैं, हनुमान जी ने इतना किया वे तो भगवान भगवान कहते हैं तुम हम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो मेरे भरत के समान है, और मम हित लागी जन्म इन हारे भरत उते मोहि अधिक प्यारे, जो बंदर है वो भगवान के लिए गए, सीता जी खोज के लिए गए, कहाँ गए जंगल में और कहाँ रहते थे, उस जगह में रहने वाले जंगल में कोई नई बात करी, वृक्षों पर गए पहाड़ों में गए घूमने जा गुफा है उनमें सोता हुआ देखा, तो वो तो कम था ही, पर राम जी कहते मम हित लागी जन्म इन हारे, मेरे लिए तो भरत उते मोहि अधिक प्यारे, अरे हनुमान जी भरत सम भाई, ये क्या बात है, को तो क्या है भाई इतने इतना कम भर सम, तो हनुमान जी की तो महिमा होगी, हनुमान जी ये क्या है मुंह लाए भगवान ने, ये क्या राक्षस को मारा है भगवान ने, लंका जलाई किया काम को प्रसिद्धि हुई, बंदे को बिजली कुछ प्रसिद्धि नहीं, कौन जानता किस बंदे ने कितना काम किया, तो उसकी सेवा गुप्त हुई, गुप्त दान है गुप्त सेवा, उसका महात्म अधिक है, तो भरत अधिक प्यारे भरत से भी इतने मेरे प्यारे, ऐसे आप भी काम करो जो करते हो, रसोई बनाते हो, चौका लगाते हो, जल भरते हो, कपड़ा धोते हो, स्नान करते हो, उसको अर्पण करो, हे नाथ आपके अर्पण, ये आपके अर्पण। कितनी विचित्र बात है, मुफ्त में ही रसोई बनाते है, भगवान आपके लिए बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनती है, ठाकुर जी का अर्पण हो जाएगी। शौच स्नान नित्य कर्म करो, स्नो वो भगवान का अर्पण कर दो, स्नान ये बढ़ जो करो वो काम भगवान के अर्पण, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अरे बच्चा माँ के कहने से दूध पी लेता है तो माँ राजी होती है कि नहीं, वो माँ का अर्पण हो गया। ऐसे हम भोजन करते हैं भगवान के अर्पण, भगवान खुश हो जाएंगे, छोरे रोटी खा ली अच्छी बात है, भगवान खुश हो जाएंगे, भोजन तो हमारे को मिले, अरे माँ राजी हो जाए, ऐसे भगवान राजी होते हम कोई काम कर दे। ये महाराज सोना आपने निद्रा समाधि स्थिति चलते फिरते अर्पण करो तो भगवान के मेरी परिक्रमा करता है, ये लेट जाओ तो मेरे को नमस्कार करता है, नींद आ जाओ तो मेरी समाधि लगाई है मेरे में, अर्पण आप भगवान को कर दो, भगवान वो मान लेते हैं। भगवान कह सकते हैं कमजोर हो तो आप सहायता करो तो सहायता होगी, ऐसे तो कमजोर है नहीं, आप अर्पण करो उसे राजी हो जाते हैं। आप देखो बाहर गए बाजार में काम धंधा गए और घर पर आए, बच्चों को स्त्री को कहते जाओ भाई जल पिएगा प्यास लगी है, एक बच्चा घुटनों से खेलता है, खेलते खेलते एक चाबी लेकर और पिताजी के हाथ में दे देता है, पिताजी को इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा अपने इतना बड़ा का मेरे से बड़ा, वो चाबी कहाँ से लाया, चाबी किस गई, आंगन किस गया, बच्चा किस गया, सब पूछी गई है, उन्हें कौन सी नई चीज कहीं से खरीदा कर मंगाई है, वही बस तो पिताजी रहे, पिताजी खुश हो जाए, छोटा बालक कुछ देता है आप खुश हो जाते हो नहीं, ऐसे भगवान को हम दे भगवान खुश हो जाए, भगवान को मानो, बड़ी भारी भूख थी भगवान के अभाव था उसकी पूर्ति कर दी, पिता अभाव की पूर्ति करता है, उसके देने की जो क्रिया है उससे पिता खुश हो जाता है। ऐसे भगवान के महाराज आपके अर्पण करता हूँ, ये भोजन आपके अर्पण, भोजन आपके अर्पण, आपका प्रसाद है तब मैं पाता हूँ। शास्त्र में आता है भगवान के भोजन अर्पण किया जाए भगवान के स्वीकार होता है, और भक्तों के द्वारा भगवान स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं, तो भक्त लोग पाते हैं भगवान भजन करने वाले, उसमें भगवान को तृप्ति होती है, आनंद आ, थोड़ा भोजन कर दे तो माँ कहते जी सुनो, छोड़े भोजन कर जी सुनो, ऐसे भगवान जी सुनो हो जाए। आप भगवान आपके काम है, आपका काम करते हैं, आपका घर है, ये घर आप अपना मानते हो तो गलती है, आपसे पहले आपके पिता कहते हमारे घर है, उससे पहले दादाजी कहते मेरा घर है, और आपके बाद बेटा कहे मेरा घर है, पोता कहे मेरा घर है, तो आपका घर कहा तो बदलता है, घर के मालिक तो बदलते जाते हैं, आप कैसे मेरा घर, आप कैसे आप आज ठहरते हो, छापा मारते हो मेरा है मेरा है, अरे ठाकुर जी का है, आप मानो अपना बेटा माने अपना पोता अपने, तो भगवान का तो है ही, आप तो बदलते रहते हो, सराय में कभी कोई ठहर गया, कभी कोई ठहर गया, वे चले गए और ठहर गए, वे चले गए और ठहर गए, वो कहते धर्मशाला मेरी है क्यों हम रहते, अरे धर्मशाला बदलते रहते, घर धर्मशाला है, अपनी मान कर अभिमान कर लो, बोली हमारा घर ऐसा, हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में इतना है, तो ये तो सब बदलने वाला है, वो आप भाव अर्पण कर दो कि महाराज आपका घर है तो आपके घर में हम रहते हैं, हरदम भगवान के घर में रहते हैं, और वो किसके भगवान के हैं, और भगवान के घर में रहते हैं, और भगवान का काम करते हैं, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान पर एहसान हो जाए मेरे घर में रहते हैं भाई, मेरे घर का काम करते हैं और मेरा प्रसाद पाते हैं, और आपके प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं, कमा कर ला करके अपने स्त्री पुत्र परिवार का पालन करते हो, तो भगवान को भगवान ने आपके प्रसाद दिया, वो तो प्रसाद से आपके जनों की हम सेवा करते हैं, ये पंचामृत है, कल्याण कर दे, हम भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, कितना बढ़िया पंचामृत, निहाल हो जाओ, कल्याण जितना सुगम है इतना सुगम काम संसार का कोई नहीं है, केवल इतनी इस बात है, तत्पुरुषो मदर्पणम शुभाशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही, फल बताया शुभ अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगी, अरे मांगो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, शुभाशुभ फल मोक्ष से सब पाप पुण्यों से मुक्त हो जाओगे आप, अरे परमात्म प्राप्त हो जाओगे, तत्पुरुषो मदर्पणम, मदर्पणम पुरुषो मेरे अर्पण कर दो, तो भगवान के अर्पण करते रहो, हर्ज क्या हो गया। चलना फिरना भगवान में, बोलना चलना भगवान के, सुनना भगवान के, कहना भगवान के अर्पण सुनते हो तो भगवान के महाराज आपके लिए कथा सुनते हैं, आपके लिए सुनते हैं, आपके अर्पण कहते हैं, आपके लिए आपके अर्पण चलते हैं, आपके अर्पण आते हैं, आपके अर्पण जाते हैं, आपके अर्पण सोते हैं तो आपके अर्पण, जगते हैं तो आपके अर्पण, पढ़ते हैं तो आपके अर्पण, बात करते हैं तो आपके अर्पण, काम धंधा करते हैं, सब सतगुरु सर्व मत अर्पण गुरुष्वा सब मेरे अर्पण कर दो तो सब भगवान का भजन हो गया। सब भजन जितना हो भजन, भजन नाम सेवन, भगवान का सेवन भजन सेवायाम, तो भगवान के भजन हो गया। तो इतनी शुभ बात है, केवल भाव भजन दो। काम करते हो अपने लिए, उसमें पाप और पुण्य लगता है, भगवान में घर से पाप पुण्य से ऊंचे उठ जाओगे, पाप से पुण्य से दोनों से ऊंचे उठकर मुक्त हो जाओगे केवल भगवान के अर्पण करने से। तो सुहासुभ फल एवं मोक्ष से कर्म मने। इससे पहला पत्रम पुष्पम पुष्पा था, पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम् भक्तिवृतम् अश्नामि। यो भक्ति का उपहार मैं भोजन करता हूँ, उसमें पत्र पुष्प फल जल है, नाम बताया भगवान के लिए। अब तुम यत करो श्री, वो पदार्थ बताए, अब क्रिया बताते हैं। यत करो श्री यदश राशि यजोशी दयाशी यद तपस्वी कहते हैं तत्पुरु पदार्पण कहते कुंती पुत्र सुन, तो प्यार का नाम है, मेरी बुआ का लड़का है, ऐसे अर्पण तत्पुरु पदार्पण। तो शुभाशुभ फल वो मोक्ष से कर्म बंदने ही संन्यास योग तत्व तो माऊ पेश संसार से छूट जाएगा। अपने लिए करता है वो संसार फंसता है, अपने लिए करता है क्यों फंसता है, वो संसार फंसता ही नहीं। ये हमारे यहाँ रीति थी, राजा राज्य करते थे ना, तो गांव के मालिक होते ठाकुर, वो अपना खेती और कराते तो गांव में किसी आदमी आ रहे, आज हमारे खेत में काम करना होगा, सो बुला लिया, जनरल कुछ नहीं रोटी खिला दी, काम कर लिया। तो उसका खेत वो बेगार कहते हैं, बेगार तो बेगार काटनी पड़ती है ना, ठाकुर मालिक है तो बेगार गाते, वो भी महाराज बेगार भी ठाकुर के अर्पण हो जाती है, तो प्रेम से अर्पण कर दो, भगवान की अर्पण क्यों नहीं होगी। बाकुड़े के पास विष्णुपुर गांव है, नंदे का विष्णुपुर, तो विष्णुपुर में राजा थे, क्या नाम था, गोपाल है, गोपाल की बेगरा, गोपाल सिंह जी नाम था उसका। तो उसमें महाराज सैकड़ा मंदिर है, टूटे फूटे पड़े तरह तरह के बड़े वो मंदिर, वृंदावन था कहते हैं, वहां गोपाल सिंह जी भगवान के भक्त थे, तो भक्तों की सेवा दो सबको दे दिया, राज सब गांव भर में कह दिया कि एक आदमी महाराज शाम के वक्त में इतने बजे से इतने बजे नाम जप करो, करना पड़ता था, नहीं करते दंड देते उनको। तो सब लोग तो गोपालिया की बेगार है, गोपालिया की बेगार है, क्या राम 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 राम, राम, राम बाहर बैठे राम राम कर प्रेम से करे, स्नेह से प्रेम से करे, कितनी बढ़िया बात है। भगवान करे गोपालिया की बेगार अभी तक नाम चलता है, गोपालिया की बेगार है करनी पड़ेगी, गोपालिया की बेगार कहावत चलती है। तो ऐसे वो राजा कराता था सबसे, ऐसे ऐसे राजा हो गए, प्रजा को भगवान में लगाते थे, उपवास कराते थे, एकादशी को उपवास करते तो दंड होगा, उपवास करते थे, तो ऐसे भगवान में लगाते थे, भक्तों का स्वभाव था। तो ऐसे तत्पुरुषो मदर प्रणाम सब भगवान का अर्पण करो, तो वो जाएगा भजन। कितनी शुभ बात है, कितनी केवल सावधानी रखना है कि भगवान के लिए भगवान का अर्पण करते हैं।